नमस्कार। आज हम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन उपासना का आधार इसकी गहराइयों में उतर रहे हैं। कोशिश करेंगे समझने की कि ये जो पूजा पाठ है, उपासना है, इसका असली मतलब क्या है, मतलब सिर्फ रस्मों रिवाजों से आगे क्या है
जी।
और स्रोत है हमारे पास वंदनीय माता जी की अपनी अमृतवाणी, जो देखिए आम इंसान से लेकर साधना के पथ पर चलने वालों तक सबके लिए एक मार्गदर्शन है।
बिल्कुल।
तो चलिए देखते हैं कि उपासना के आधार पर माता जी क्या समझा रही हैं, क्या मुख्य बातें हैं इसमें।
हाँ, और इसमें जो मूल सवाल उभरता है वो यही है कि भाई उपासना से असल में हासिल क्या होता है और उसका सच्चा पक्का आधार क्या होना चाहिए। वंदनीय माता जी इसमें आप देखेंगे अहंकार के त्याग और मन की जो शुद्धि है, पवित्रता, उस पर बहुत जोर देती है।
अच्छा, अहंकार की बात आई तो इसमें वो एक कहानी है ना जो सोचने पे मजबूर कर देती है।
हाँ हाँ, वो संत वाली।
जी, एक संत थे, उन्हें उपासना से कुछ शक्ति मिली तो बस अहंकार आ गया। तो गुस्से में एक चिड़िया को देखा तो वो बेचारी जलकर राख हो गई। अब उन्हें लगा कि वो तो किसी को भी भस्म कर सकते हैं, तो ये अहंकार का कैसा रूप है?
देखिए, ये कहानी बिल्कुल साफ दिखाती है कि शक्ति मिलने पर अहंकार कैसे रास्ते से भटका सकता है। फिर जब वो संत भिक्षा मांगने गए एक स्त्री के यहाँ, और वो अपने पति की सेवा में लगी थी
जी,
तो उसने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए। संत को तो आ गया गुस्सा,
सोचा होगा मेरा अपमान कर दिया।
हाँ, पर उस स्त्री ने बड़े शांत भाव से कहा, महाराज न मैं कोई चिड़िया हूँ न आप कोई कौवे, आपने चिड़िया जला दी होगी, मुझे नहीं जला सकते।
अरे,
उसे आत्मज्ञान था। क्यों? क्योंकि वो अपने हर कर्म को, घर के काम को भी, पति सेवा को भी ईश्वर की पूजा समझकर पूरी निष्ठा से कर रही थी, वही उसका तप था।
कमाल है, मतलब कर्म ही असल में पूजा बन गया।
बिल्कुल।
फिर उस संत को ज्ञान के लिए तुलाधार वैश्य और एक चांडाल के पास भी भेजा गया था, है ना?
जी हाँ, और उन सबने भी यही सिखाया कि अपना जो नियत कर्म है, अपना कर्तव्य, उसको पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से करना, और हर प्राणी में ईश्वर का रूप देखना, यही सच्ची उपासना है। इसी से उन्हें आत्मज्ञान मिला।
तो मतलब बाहरी क्रियाकांड से ज्यादा अंदर का भाव महत्वपूर्ण है।
यही यही वंदनीय माताजी एकदम स्पष्ट करती हैं कि साधक में अहंकार वृत्ति, मतलब ये मैं कुछ हूँ, मैंने ये किया, ये भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तपस्या का असली मकसद ही अहंकार को गलाना है। अगर ये मैं बना रहा तो सारी उपासना, वो चाहे कितनी भी हो, खोखली है, बस एक बाहरी दिखावा।
सही बात है, विनम्रता जरूरी है।
जी, विनम्रता ही सच्ची साधना की नींव है।
और इसी से जुड़ी हुई वो बात है कि मन का फेरना चाहिए, न कि सिर्फ कर का मन का, मतलब हाथ की माला।
जी,
इसका क्या मतलब है गहरा?
इसका सीधा सा मतलब है कि अंदर की पवित्रता, मन की सफाई, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे हम किसी खास मेहमान के आने से पहले घर को साफ करते हैं, सजाते हैं।
हाँ, करते हैं।
ठीक वैसे ही परमात्मा को या अपनी इष्ट देवी देवता को, गायत्री माँ को अपने अंदर बुलाने से पहले मन को साफ करना होगा। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये सब जो मैल हैं, इनको हटाना होगा। इनके बिना, मतलब अगर ये अंदर है तो बाहर का सब कुछ सिर्फ एक छलावा है, कोई असली उन्नति नहीं।
और फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, समर्पण।
हाँ, समर्पण।
वंदनीय माता जी कहती हैं कि समर्पण के बिना ईश्वर प्राप्ति हो ही नहीं सकती।
जी।
जैसे एक नारी अपना मायका, अपना घर बार सब छोड़कर पति को ही अपना सब कुछ मान लेती है, वैसा ही एक निष्ठ समर्पण ईश्वर के प्रति चाहिए।
जी,
इसमें स्वामी श्रद्धानंद जी का भी उदाहरण दिया है।
हाँ, दिया है। उनकी पत्नी का धैर्य, उनकी सेवा, उसी ने स्वामी जी को बदला। एक तरह से वो पत्नी ही उनकी गुरु बन गई। और ये समर्पण सिर्फ नारी के लिए नहीं है, पुरुष के लिए भी उतना ही, बल्कि हर साधक के लिए जरूरी है। ईश्वर से केवल मांगते ही नहीं रहना है, उन्हें अपनी श्रद्धा, अपनी भावनाएं, अपनी निष्ठा, ये सब देना भी सीखना होगा।
अच्छा,
वंदनीय माता जी का सूत्र है, पहले दीजिए फिर लीजिए। पहले अपनी तरफ से समर्पण तो करो, तब कृपा की उम्मीद रखो।
ये बहुत गहरी बात है, पहले देना है। अच्छा, एक और जरूरी बात है, माता जी जोर देती हैं, एक ही सादे सब सदे और सब सादे सब जाए, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है एक निष्ठा, मतलब किसी एक इष्ट देव पर या एक साधना मार्ग पर पूरी श्रद्धा और विश्वास टिकाना, उसी से मंजिल मिलती है। अगर आप 10 जगह भटकेंगे, 100 भगवानों को पूजेंगे, पर मन कहीं नहीं टिकेगा तो कुछ हाथ नहीं आने वाला। वो गुजरात का उदाहरण शायद इसी सिलसिले में देती हैं कि कई लोग दर्जनों देवी देवताओं को पूछते तो हैं, पर असल श्रद्धा, वो जो एकनिष्ठ भाव है, वो कहीं नहीं होता।
हाँ, मतलब भटकाव हो जाता है।
जी, यहाँ मुद्दा किसी क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि उपासना में एकाग्रता और सच्ची निष्ठा की कमी का है।
और वातावरण, माहौल, उसका भी तो महत्व बताया गया है ना?
बिल्कुल, जैसे किसी तीर्थ स्थान का, आश्रम का, या जैसे शांति कुंज है, ऐसे सिद्ध स्थानों का एक अपना माहौल होता है। वहाँ मन अपने आप शांत होता है, साधना में लगता है।
सही है।
तो वैसे ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर का, अपने आसपास का माहौल भी सात्विक रखें, सकारात्मक बनाएं। अच्छी संगत, अच्छे विचार, शुद्ध सात्विक वातावरण, ये सब हमारी साधना में, हमारी उन्नति में मदद करते हैं।
तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें वंदनीय माताजी के इस उद्बोधन का, तो यही है कि सच्ची उपासना बाहरी कर्मकांड या दिखावे में नहीं है।
जी नहीं,
बल्कि वो है आंतरिक शुद्धि में, अहंकार को गलाने में, अपने हर काम को पूजा समझ कर निष्ठा से करने में, और ईश्वर के प्रति बिना शर्त पूर्ण समर्पण में।
हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमें रोजमर्रा की जिंदगी के हर काम को, छोटा हो या बड़ा, उसे ईश्वर का ही काम समझकर पूरी विनम्रता और लगन से करने की प्रेरणा देता है। उपासना कोई अलग चीज नहीं, वो जीवन जीने की एक कला है, एक दृष्टि है।
और अंत में एक विचार हम सबके लिए छोड़ जाते हैं कि हम जो अपने रोज के काम करते हैं, दफ्तर का काम है, घर संभालना है, किसी की मदद करना है, उसे किस भाव से करते हैं? क्या हम उन साधारण कामों में भी वही पूजा वाला समर्पण, वही निष्ठा ला सकते हैं जिसकी बात वंदनीय माताजी कर रही हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।